रेडियो नेपाल है। अब मीनू प्रधान से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र पर कोई आंच न आने देने की राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने जताई प्रतिबद्धता। मानव अंगदान और प्रत्यारोपण में अपने अपने क्षेत्र से योगदान करने की प्रधानमंत्री प्रचंड ने की अपील। अंग प्रत्यारोपण उपचार में मौजूद कानूनी जटिलताओं को संबोधित करने की जताई प्रतिबद्धता। संक्रमणकालीन न्याय संबंधी बाकी कामों को दलों की सहमति में ही पूरा किया जाएगा। सूचना तथा संचार मंत्री रेखा शर्मा का कथन। और फिलीपींस की राजधानी मनीला में कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र पर कोई भी आंच न आने देने की प्रतिबद्धता जताई है। आज नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश द्वारा विराटनगर में आयोजित उद्योगियों के सम्मेलन और प्रजातंत्र सेनानी सम्मान समारोह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि संविधान द्वारा दी गई भूमिका का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की वे रक्षा करेंगे। राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि वर्तमान अवस्था में आंतरिक अर्थतंत्र जिस तरह से चलायमान होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी अर्थतंत्र सुधार के लिए सरकार द्वारा बनाई गई रणनीतियां प्रभावकारी बनती जा रही हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौड़ेल ने कोशी प्रदेश के 21 प्रजातंत्र सेनानियों तथा उद्योगियों, व्यापारियों और पत्रकार सहित 28 लोगों को कदर पत्र और 2 सल्ला उड़ाकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने मानव अंगदान और प्रत्यारोपण के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपने अपने स्तर पर योगदान करने की अपील की। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केंद्र और अंग प्रत्यारोपण समाज नेपाल द्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रीय प्रत्यारोपण सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अंगदान के लिए सभी को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल में अंग प्रत्यारोपण संबंधी इलाज के क्षेत्र में रही जटिलताओं को सरकार संबोधित करेगी। प्रधानमंत्री प्रचंड ने मस्तिष्क मृत्यु के बाद अंगदान संबंधी विषय में राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केंद्र के प्रयासों की सराहना की। सम्मेलन में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बसनेत ने कहा कि शहीद धर्मभक्त राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केंद्र विस्तार के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज ही माओवादी केंद्र के बुरा नीलखंड नगर सम्मेलन में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद काठमांडू घाटी में लोड शेडिंग का अंत हुआ है और तीसरे कार्यकाल में समग्र देश को उजाला बनाने के अभियान में वे लगे हैं। इसी तरह एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन ने सीतापायला में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि आगामी अधिवेशन में सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप और संघीय शिक्षा विधेयक को संसद से पारित कराने की पहल करेंगे। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि विधेयक में शिक्षा की जायज मांगों को संबोधित किया जाएगा और विद्यालय शिक्षा को और अधिक सबल बनाया जाएगा। उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड़का ने कहा कि नेपाल सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया है। शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केंद्र और मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केंद्र के सहकार्य में गुरबाकोट नगरपालिका वार्ड नंबर 7 सुर्खेत स्थित मेहलकुना अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री खड़का ने कहा कि स्वस्थ समाज निर्माण में सरकार केंद्रित है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन संविधान की भावना के विरुद्ध बोलने की छूट किसी को भी नहीं है। आज सुनसरी के धरान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री शर्मा ने कहा कि संक्रमणकालीन न्याय संबंधी बाकी कामों को सभी दलों के सहकार्य, सहमति और विमर्श पर पूरा किया जाएगा। आज ही मध्य पहाड़ी राजमार्ग के कोशी खंड अंतर्गत धनगुटा के हिले एक्सचेंज सेंटर में सूचना महामार्ग ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का उद्घाटन करते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि एनसेल शेयर खरीद बिक्री के मामले में सरकार छानबीन समिति बनाकर काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोशी प्रदेश के अंदर कुल 683 किलोमीटर की दूरी में सूचना महामार्ग बनाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि नेपाल टेलीकॉम के जरिए शुरू की गई 4G सेवा के 739 स्थानीय तहों में पहुंचाया गया है और इस तरह देश के कुल 67% क्षेत्र में 4G सेवा का विस्तार हुआ है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G थिजियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को फोर्जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री एनपी साउथ ने कहा कि प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के बाद नेपाली पत्रकारिता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री साउथ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे और शांति प्रक्रिया के विषय को नेपाल विश्व मंच पर स्पष्टता के साथ रखा है। एक प्रसंग में परराष्ट्र मंत्री साउद ने कहा कि गजा में हमास समूह के अपहरण में फंसे हुए विपिन जोशी की सकुशल रिहाई के लिए सरकार निरंतर कूटनीतिक प्रयास कर रही है। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री सुरेंद्र राज आचार्य ने कहा कि आपदा के समय में निस्वार्थ भावना से मानवीय सेवा में सक्रिय रेड क्रॉस कर्मियों की भूमिका अतुलनीय है। आज पोखरा में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी 41वें राष्ट्रीय जूनियर तथा युवा रेड क्रॉस की दो दिवसीय गोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंत्री आचार्य ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस के स्वयंसेवक सरकार का सहयोगी बनकर देश में आपदा के समय और स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा देते आ रहे हैं। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड अंतर्गत रही तुईन नदी में पुल बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके मद्देनजर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दैनिक 4 घंटों के लिए इस खंड से सवारी साधनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। ये जानकारी नागढुंगा मुगलिन सड़क परियोजना पश्चिम खंड के सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्य ने दी। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चितवन ने भी इस दौरान वैकल्पिक मार्ग प्रयोग करने का अनुरोध किया है। पालपा के निस्ती गांव पालिका वार्ड नंबर 3 कैंगरूंग स्थित श्याम बहादुर पल्ली के घर में आग लगी होने के कारण 9 महीने की बच्चे की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय पालपा के सूचना अधिकारी सुगंध श्रेष्ठ ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आज एक कार और ट्रक की हुई टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि घटना आज सुबह सेंट टॉमस में हुई थी। उन्होंने कहा कि ट्रक में सवार लोगों को कुछ नहीं हुआ, जबकि कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि कार चालक की आंख लग गई थी, जिस वजह से दुर्घटना हुई। पुलिस ने कहा कि कार चालक के सोने की वजह से कार उल्टी दिशा में चली गई और ट्रक से टकरा गई। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र पर कोई आंच न आने देने की राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने जताई प्रतिबद्धता। मानव अंगदान और प्रत्यारोपण में अपने अपने क्षेत्र से योगदान करने की प्रधानमंत्री प्रचंड ने की अपील। अंग प्रत्यारोपण उपचार में मौजूद कानूनी जटिलताओं को संबोधित करने की जताई प्रतिबद्धता। संक्रमणकालीन न्याय संबंधी बाकी कामों को दलों की सहमति में ही पूरा किया जाएगा। सूचना तथा संचार मंत्री रेखा शर्मा का कथन। और फिलीपींस की राजधानी मनीला में कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभ रात्रि।